मंजू की डायरी।
मैं पता नहीं क्या सोच रही थी कि तभी नीचे से आवाज आई,
मंजू जल्दी से नीचे आ जा।
आवाज जानी पहचानी हुई लगी। मैं विक्की के बारे में सोच रही थी। विक्की यानी मेरा नया पड़ोसी, बगल वाले मकान में किराए पे शिफ्ट हुआ है, अकेले रहता है, मार्केट वाली होम डेकोर की दुकान पे काम करता है। शाम को कभी कभी छत पर आता है तो मेरी उसके साथ नजर लड़ ही जाती है। मुझे उसको देखना अच्छा लगता है। मुझे देख के वो कभी कभी स्माइल भी करता है। लेकिन ये दूसरी आवाज किसकी आई जो मेरे और विक्की के ख्यालों के बीच आ खड़ी हुई? मेरा नाम मंजू है और उम्र 19 साल। कैसे कटेगा जवानी का सफर? आवाज नेहा ने दी थी। मैं जैसे ही घर की बालकनी तक आई, उसने कहा,
घर के पर्दे लेने जाना है, कब चलोगी? सर्दियाँ आ रही है तो रजाई और गद्दों के कवर भी बदलने होंगे।
मैंने छूटते ही कहा,
दोपहर में चलते हैं।
दोपहर में मैं नेहा के साथ पैदल ही बाजार की तरफ चल पड़ी। हम दोनों जब विक्की की दुकान पर पहुँचे, तब तक बाकी के लोग खाना खाने जा चुके थे। विक्की ने देखते ही मुझे हल्की सी स्माइल दी। नेहा पर्दे और चद्दरें खरीदने में बिजी हो गई, लेकिन मुझे विक्की को देखने के अलावा कहीं और देखने का मन नहीं कर रहा था। विक्की ने गाढ़े पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और ब्लू कलर की डेनिम्स। नेहा की बच्ची ने विक्की को लगातार अपनी बातों में उलझाए रखा था। वो मेरी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने नेहा से कहा,
तुझे बैंक भी जाना था ना?
और उसने कहा,
हाँ।
मैंने कहा, आज सैटरडे है और 3 बजे के बाद बैंक बंद हो जाएगा। वो सोचने लगी। मैंने कहा, तू बैंक जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। मैंने ये बात विक्की की तरफ देखते हुए कही। वो चादरों को मोड़ के जमा कर रहा था। पलक झपकते ही नेहा गायब हो गई। अब मैं विक्की की और विक्की मेरा था, कम से कम अगले 1 घंटे के लिए। विक्की ने मुझसे कहा,
आपको क्या दिखा दूं?
मैंने कहा, कुछ नहीं। वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसने बात को टालते हुए कहा,
आपके लिए हमारे पास कुर्ती का एक नया कपड़ा आया है और वो भी कलकत्ते से।
मैंने मुंह बनाकर कहा, कलकत्ते से? उसने फिर से उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया,
जी पीछे गोदाम में पड़ा है, आप कहें तो निकाल के लाता हूँ।
मैंने इशारे से कहा, ला निकाल के। वो अंदर की तरफ चला गया और मैं उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ। उसकी चादरों और पर्दों के गट्ठर के बीच मैंने अपना दुपट्टा वहीं रख दिया। गोदाम में पीले रंग के कई बल्ब जल रहे थे। अब मैंने पीछे से कहा, मुझे डिम लाइट पसंद है। वो सकपका गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और हाथ में कुर्ती का कपड़ा लेके वो वहीं खड़ा हो गया। मैंने कहा, इतना डरते हो तो काम कैसे चलेगा? विक्की से कुछ बोला ही नहीं गया। मैं उसके और नजदीक चली गई। मैंने उसको हल्का सा धक्का दिया और वो दुपट्टे के ढेर में गिर गया। मैं भी उसके बगल में जानबूझकर गिर गई। हम दोनों दुपट्टों के झुंड में इतने पास थे कि हमारी सांसों के दुपट्टे भी मानो सांस ले रहे होंगे। मैंने अपने दोनों हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वो इस तरह मुझे देखता रहा जैसे कोई अजूबा हूं मैं। बटन खोलने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों से उसके सीने को सहलाना शुरू किया। विक्की की बॉडी कांपने लगी थी। अब मैं विक्की के ठीक ऊपर थी। मैं थोड़ा आगे की तरफ झुकी और विक्की की आंखों पर हल्का सा किस किया। उसने आंखें बंद कर ली। विक्की को भी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उसका कसाव मेरी पीठ पर बढ़ता गया। यही तो चाहती थी मंजू। देर तक उस कमरे में हमारी गर्म सांसों के अलावा कोई नहीं था। हम दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि किसी चीज का होश नहीं था। फिर जब मैं निकलने को तैयार हुई तो विक्की ने एक नए दुपट्टे से मेरा सीना ढक दिया। मैंने भी अपना पुराना दुपट्टा इस प्यार की निशानी समझकर वहीं छोड़ दिया और खिलखिलाती हुई वापस लौट आई।